नमस्कार, मानव रचना 107.8 पर मैं जया गोयल आज लेकर आई हूं आपके साथ एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन। हम आज बात करने वाले हैं आज की युवा पीढ़ी पर, और मेरे साथ स्टूडियो में हैं कम्युनिटी मेंबर्स राकेश शर्मा जी, मैम इंद्रा किलम और मैम सविता सयाल। आप सबका स्वागत है।
नमस्कार जया जी।
और एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा विषय है आज की युवा पीढ़ी, उस पर बात करने में, उसके बारे में सोचने में भी कहीं ना कहीं एनर्जी आ जाती है।
बिल्कुल बिल्कुल, युवा शक्ति का संचार हम में भी हो जाता है।
बिल्कुल, इसी के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हुए आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि सविता जी, आपसे चालू करूंगी, और आपको क्या फर्क लगता है आज की युवा पीढ़ी में और आज से अगर हम 20 साल या 25 साल पहले जाएं तो उस समय की युवा पीढ़ी में?
जय जी, आज की युवा पीढ़ी और पहले की युवा पीढ़ी में बहुत अंतर है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखिए, आज की जो युवा पीढ़ी है उनके लिए एक शब्द में मैं अगर उसको परिभाषित करूं तो आप कह सकते हैं वो बिंदास हैं।
बिल्कुल,
बिंदास का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा उशृंखल है, इनडिसिप्लिन्ड है। देखिए, वो अब जाति पाति और छोटी छोटी संकीर्णताएं जो हैं हमारी, छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ चुके हैं, उनकी सोच जो है विशाल है। दूसरा, वो ज्यादा इंडिपेंडेंट है। देखिए, हमारे समय में हमारे पेरेंट्स या बड़े लोग हैं वो सब डिसाइड करते थे।
बिल्कुल,
अब समय आ गया है वो अपने कैरियर के बारे में स्वयं डिसाइड करना चाहते हैं। ऑफकोर्स बड़ों की राय लेते हैं, इसके अतिरिक्त वो अपने कैरियर के लिए किसी भी एक्सटेंड तक जाने को तैयार है। अब ऊंचाइयां उनके सामने है और उनका फोकस अपने कैरियर पे, अपनी ऊंचाइयों पर है।
मैम, असल में ये फर्क डेवलपमेंट ग्रोथ का है। पहले हम इंडिया के बाहर नहीं सोचा करते थे।
बिल्कुल,
और अब तो पूरा संसार ही एक देश मात्र बन के रह गया है।
बिल्कुल जया जी,
दे कैन गो एनीवेयर, दे कैन डू एनीथिंग दैट दे वांट। अब तो बिल्कुल वो उस बात पे यकीन होना लग गया है कि जो सोचो सो मिल जाएगा।
बिल्कुल, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है जया जी, और उसी टेक्नोलॉजी की स्पीड से हमारा युवा विभाग।
बिल्कुल सर, आपसे भी इसी बारे में पूछना चाहूंगी, आपको क्या अंतर लगता है?
देखिए, अगर आप युवा पीढ़ी की बात करें आज से 20 साल पहले और आज की,
हाँ जी,
पहले आप देखिए इतनी फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी युवा पीढ़ी में। और अगर हम एक छोटी सी जगह, हम शहरों में ना रहते हुए अगर आप रूरल एरियाज को भी हिट करें तो रूरल एरियाज और शहरों में काफी अभी गैप है।
बिल्कुल,
देखिए जो नो डाउट कि एजुकेशन का रोल बहुत ज़्यादा होता है, और एजुकेशन जो अर्बन एरियाज में यूथ रह रहा है उसकी सोच और जो गांव में लोग रह रहे हैं उनकी सोच में फ़र्क है। तो मेरी ये सजेशन होगी कि एक एजुकेशन रूरल एरियाज में भी, क्योंकि देखिए हमें इतना गैप नहीं चाहिए।
बिल्कुल,
एक गैप नहीं चाहिए। हमने अगर ग्रो करना है, नो डाउट वी आर ग्रोइंग एट 8 or 9%
जीडीपी, लेकिन फिर वो सिर्फ एक मात्र परसेंट जनता के लिए नहीं होना चाहिए, वो ग्रोथ सारी तरफ होनी चाहिए।
आप देखिए कि 70% लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं।
बिल्कुल,
तो आप अगर आज का क्राइम देखें यूथ में, सबसे ज्यादा क्राइम आप हर रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, फलानी जगह मर्डर हो गया या रॉबरी हो गई, तो दैट इज बेसिकली दे आर द रूरल एरियाज पीपल। तो रूरल एरियाज में या हमें जनरल यूथ में अभी और बहुत कुछ आना बाकी है जिससे कि और इम्प्रूवमेंट हो सके। टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज़्यादा है। पहले ज़माने में आप देखिए मोबाइल,
बिल्कुल
हमारे टाइम पे नहीं होते थे। आप देखिए मोबाइल पे आप चलते फिरते किसी से बात कर सकते हैं, पहले आप घर पहुंचते थे और फिर किसी से बात करते थे, और बहुत कुछ चेंजेस होने
वाले हैं। सर, आज भी मोबाइल मैं अपना सिर्फ फ़ोन करने और फ़ोन रिसीव करने के लिए करती हूँ, और मेरे बच्चे जो छोटे हैं वो आज भी उसको एक मशीन की तरह इस्तेमाल करते हैं।
हम लोग नहीं यूज़ करते, कई चीज़ें हमें नहीं मालूम होती जो बच्चों से पूछनी पड़ती है।
बिल्कुल बिल्कुल, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज।
यस, टेक्नोलॉजी नो डाउट, बट पीपल हु आर ऑफ मिडिल एज दे विल टेक टाइम टू कैच होल्ड ऑफ दैट थिंग, इसलिए वो टाइम लगेगा। तो मेरे हिसाब से अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की जरूरत है।
बिल्कुल, इंद्रा मैम आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है 20 साल और अब की युवा वर्ग?
देखिए जया जी, समय तो परिवर्तनशील है।
बिल्कुल,
ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि सब कुछ बदलेगा।
बिल्कुल,
और 20-30 साल में जो भी कुछ हुआ है अगर आप उस पर एक दृष्टि डालें तो आप पाएंगे कि इन 30 सालों में, 25 सालों में हमारा समाज, हमारा देश, हमारी संपूर्ण विश्व में एक क्रांति आई, और हमारी हर बात इतनी तेजी से बदल रही है, हर चीज इतनी तेजी से बदल रही है कि आंख झपकते ही लगता है कि ये तो बासी हो गया। तो उसके साथ हमारे यूथ को चलना ही है।
बिल्कुल,
इसलिए जो 20-30 साल पहले की जो बात थी उसमें और इसमें अंतर अवश्य होगा। आप संचार के साधन देख लीजिए, आप सामाजिक परिस्थितियां देख लीजिए, सब में क्रांति है। तो उस यूथ के या उस युवा पीढ़ी के विचारों में भी क्रांति आना लाजमी है। वो क्रांति पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो बात हम आगे कर सकते हैं,
बिल्कुल,
लेकिन अंतर तो अवश्य आएगा। ये सोचिए कि जब हम लोग छोटे थे, युवावस्था में थे, हमारे बड़े भी ऐसे ही सोचते थे, लेकिन आज समय को बदलना ही है, आज युग के साथ उसको चलना ही है।
और अगर हमारी युवा पीढ़ी चेंज नहीं हुई तो नुकसान हमारा ही होगा, क्योंकि चेंज के साथ तो चलना पड़ेगा ना, चेंज एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
हर तरफ अपूर्व युग का हो रहा संचार है, ये एक कवि ने एक पंक्ति लिखी, तो उस अपूर्व युग के साथ आपकी नई पीढ़ी को चलना ही होगा।
बिल्कुल सविता मैम, आपसे पूछना चाहूंगी, ये आजकल के बच्चे हैप्पीनेस किसको कहते हैं? ये एक बड़ा छोटा और बहुत बड़ा प्रश्न भी है कि हैप्पीनेस किस चीज को कहते हैं और उनका स्टेट ऑफ माइंड आप कैसे पढ़ते हैं?
जया जी, ऐसा है कि समय के साथ साथ, जैसे इंदिरा जी ने बोला कि सब चीजों की परिभाषा में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। अब देखिए, हैप्पीनेस जिसे आप खुशी कहते हैं, उसकी परिभाषा भी अब बदल चुकी है। अब देखिए, हमारे युवा को आप पूछिए हैप्पीनेस क्या है, वो कहेगा मेरे लिए हैप्पीनेस है डांस, डिस्को, पार्टी है या लाउड म्यूजिक, उसके लिए यही हैप्पीनेस है। और या उसको अपना मनचाहा अगर स्ट्रीम मिल जाता है ट्वेल्थ के बाद, उसको उसी में हैप्पीनेस लगती है, क्योंकि अब कैरियर भी एक बड़ी फोकस चीज है उनके लिए। वो मौज मस्ती करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ उन्होंने अपना जो एक माइंडसेट रखा है उस पर भी उनका फोकस रहता है। ये आप एक बहुत बड़ी एडवांटेज माने, और आज वो दुनिया के किसी भी कोने में जाने को तैयार हैं अपने कैरियर के लिए। माँ बाप का प्यार, बहन भाइयों का प्यार उनके लिए अब एक बंधन नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि वो अब प्यार नहीं करते अपने माँ बाप से, लेकिन वो अपने कैरियर के लिए कहीं भी जाने को तैयार हैं। वो माँ बाप से जुड़े रहेंगे वहाँ भी जाकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है। आजकल कंप्यूटर से आप बात कर सकते हैं, आप वेबकैम से देख सकते हैं, तो सोचते हैं ठीक है, टेक्नोलॉजी इज देयर टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, तो वो अपने कैरियर के लिए
अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना भी तो सही है ना मैम?
बिल्कुल बिल्कुल,
अपॉर्चुनिटीज जब है तो उनको यूज करना भी बच्चों के लिए सही है।
बिल्कुल, और उसको अपने पे विश्वास है, अगर उसे किसी चीज में खुशी मिलती है तो दुनिया की परवाह किए बिना वो उधर चला जाए।
राकेश सर, आपसे पूछना चाहूंगी, हैप्पीनेस आज की युवा वर्ग?
देखिए, आज का युवा पीढ़ी जो है काफी हैप्पी है। उसका रीजन ये है कि देखिए, उसमें बदलाव आया है पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स ने भी बदला अपने आप को। अगर आप देखिए, 20 साल पहले एक रिजिड एटमॉस्फेयर हुआ करता था, और क्या जमाने के साथ बदलना चाहिए, जमाने के साथ बदलेगा, आगे बदलाव और भी आएंगे, तो उसी हिसाब से पेरेंट्स को अपने आप बदल, जब पेरेंट्स बदल रहा है तो यूथ को थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है कि मेरे माँ बाप मेरे साथ हैं, तो नेचुरली वो पेरेंट्स को, मेरा ये मानना है कि जो हैप्पीनेस है वो पेरेंट्स के थ्रू ही आ रही है, और पेरेंट्स का भी रोल है उसमें उनकी हैप्पीनेस के लिए।
बहुत बढ़िया बात कही आपने, कहीं आपने हमें भी एनर्जी दे दी ये कह के कि पेरेंट्स की वजह से हैप्पीनेस है। वी एक्चुअली भारत के अंदर हम लोगों का एक बड़ा अच्छा लिंक है हमारे बच्चों के साथ फैमिली में।
हाँ जी,
तो अगर वो फैमिली बॉन्डिंग सही नहीं होती तो हैप्पीनेस आना मुश्किल हो जाता है, और वो फैमिली बॉन्डिंग की वजह से ही शायद हमारे यहाँ खुशी हम छोटी छोटी चीजों से भी ले लेते हैं।
और आप ये देखिए, पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम होता था, अब न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही है, और न्यूक्लियर फैमिलीज में भी पेरेंट्स को पता भी है हमने अपने बच्चों के साथ ही रहना है जिंदगी भर, तो वो अपने आप में बदलाव लाते हैं, उस बदलाव के साथ बच्चा भी ढल जाता है, तो आप देखिए कि किस तरीके से फिर वो हैप्पीनेस आती है
अपने आप। हाँ जी मैम, आपसे भी पूछना चाहूंगी खुशी युवा वर्ग के लिए।
देखिए, युवा वर्ग की जो खुशी है उसका एक दायरा थोड़ा बदल चुका है, क्योंकि उन्हें अपनी सामाजिक परिस्थितियों के साथ चलना है, उन्हें अपने कर्तव्य उसी सामाजिक स्थिति में ढूंढने हैं, पूरे करने हैं। इसलिए शायद कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी के मामले में कुछ स्वार्थी हो गए, जैसा कि आजकल कई पेरेंट्स कहते हैं, कई लोग ये कहते हैं इन्हें क्या है, ये तो स्वार्थी हैं, इन्हें तो कोई लिहाज शर्म नहीं, बस इनका अपना मतलब पूरा होना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम एक युवा वर्ग की ओर से सोचें, एक उस यौवनावस्था में जो बच्चा है उसकी दृष्टि से सोचें, तो ज़रूर उसकी हैप्पीनेस, उसकी खुशी का दायरा अलग होगा, उसके मित्र, उसके साथी, उसका जो संबंध है उनके साथ ज़रूर होगा। लेकिन भारत में एक स्थिति ये भी है कि अपने माता पिता के साथ भी वो जुड़े हुए हैं, अपने माता, अब मैंने कई घरों में देखा है कि अपनी यंगर जनरेशन को देखा है कि जो दादी नानी के साथ बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, उन्हें लगता है कि ये घर में बैठ के हमारी बात को सुनते हैं, तो उनके हैप्पीनेस का दायरा, उनकी खुशी का दायरा जो है वो उनके घर के आसपास और उनके समाज में भी मिलता है, यद्यपि उसकी खोज में वो कहीं डिस्को में और डांस में यहाँ भी जाने लगे हैं, यहाँ भी जाते हैं, क्योंकि वे अपने लिए भी जीना चाहते हैं। वो सिर्फ सामाजिक दायित्वों को निभाते हुए नहीं जीना चाहते, वो अपने लिए भी जीना चाहते, ये परिवर्तन उनमें अवश्य आया।
बिल्कुल, मैं इतना कहना चाहूँगी कि हैप्पीनेस वो बहुत आसानी से पा लेते हैं, लेकिन शुरुआत उसकी घर ही से होती है। अगर घर में खुशी होती है तो कहीं वो खुशी ले जा पाते हैं सोसाइटी में, और घर से ही उनको पता चलता है डिस्को जाना कोई गलत बात नहीं है, आज एटमॉस्फेयर में है ये बातें।
बिल्कुल,
तो यहाँ जाना वाजिब है। आई थिंक सिर्फ लिमिट्स को जानने के बाद इन किसी भी चीजों में हानि नहीं है।
अगर मर्यादाहीन आचरण ना हो
बिल्कुल
तो खुशी तो कहीं भी प्राप्त की जा
सकती है। बहुत बढ़िया बोला मैम।
एक बात और जो मैम ने कही बात की, भाई जो दादी या नानी से बच्चों का लगाव ज्यादा होता है क्योंकि उनको प्यार मिलता है वहाँ से।
बिल्कुल,
और जब प्यार मिलेगा तो अपने आप बच्चा उस साइड मोहित होगा,
क्योंकि वर्किंग पेरेंट्स हैं या पेरेंट्स भी अब ज्यादा और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बच्चों के लिए शायद यहाँ भी कम समय है, तो इसलिए बच्चों को दादी नानी से ज्यादा समय मिलता है। तो
देखिए, संबंधों में कुछ दूरी तो अवश्य आई है, ये आज के युग की देन है कि संबंधों में कुछ दूरी दरार जरूर पड़ी है, लेकिन फिर भी एक दूसरे को समझकर बहुत से घर ऐसे, बहुत से परिवार ऐसे जहां बच्चे अभी भी अपने माँ बाप का लिहाज रखते हैं, उनके सामने बैठकर शायद शराब सिगरेट नहीं पीते, ये एक युवा वर्ग में
संस्कार है ये परिवार के।
और एक चीज और है मैम, कि आपने सही कहा कि आप अपने नजरिए से बच्चे को मत देखो, बच्चे के नजरिए से भी देखें, क्योंकि उसमें बदलाव आ रहा है। अगर आप उसको नहीं समझेंगे तो फिर
जब हम छोटे थे तो हमारी सोच और हमारे माँ बाप की सोच भी फर्क थी, और वो ही अब हमारे साथ हो रहा है, तो उसको समझना।
बिल्कुल, हम भी ये पंक्ति पढ़ते थे ना कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये बात बिल्कुल सही है, हर युग में है ये, हर पीढ़ी में।
और जया जी, शायद ये आज के युग की मांग भी है। अब देखिए, इतने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, इतने काउंसलर्स कहाँ होते थे
पहले? नहीं होते थे।
अब पेरेंट्स को लगता है कि अगर बच्चे की कोई समस्या है, हम उसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे, तो हमारे बच्चे को किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या काउंसलिंग के लिए।
ये भी टेक्नोलॉजी की ही देन है।
बिल्कुल 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 सही कहा आपने।
रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं जया गोयल आपके साथ आज एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक लेकर, आज की युवा पीढ़ी, इसी को आगे ले जाते हुए सविता मैम आपसे पूछना चाहूंगी, ये स्टाइल क्या होता है?
जया जी पूछिए मत, आज का युवा और उसका स्टाइल, मुझे तो उनके स्टाइल आज तक समझ में नहीं आया। कभी तो बहुत ज्यादा कपड़े पहन लेंगे और कभी तो मैं आपको क्या कहूँ, अब समझ में नहीं आता उनको क्या स्टाइल पसंद है। मुझे लगता है जो उनको पसंद है वो पहन लेते हैं और वो फैशन हो जाता है।
मैम वही तो स्टाइल होता है।
आई नो,
उसी को स्टाइल बोला जाता है जिसके अंदर आप कंफर्टेबल हूँ, और आजकल के बच्चे उसको कैरी कर पाते हैं। हम तो सोचते रह जाते थे।
जया जी बताइए, इतनी छोटी छोटी 9th 10th की लड़कियाँ कहाँ पार्लर जाती थी हमारे समय में? मैं तो पार्लर में अगर कभी गलती से चली जाऊँ तो मेरे तो होश उड़ जाते हैं, कि जिस उम्र में बच्चों को बिल्कुल अपनी कंघी तक करने की फुर्सत नहीं होती, और अब वो देखिए पार्लर में 2-2 घंटे लगाती हैं। आप देखिए, लड़की नहीं, लड़कों के भी इतने पार्लर लोकप्रिय हो चुके हैं। मुझे समझ में नहीं आता ये पार्लर कल्चर कब आया, कैसे आया और छा गया चारों तरफ।
मैम मेरे हिसाब से यही बात है कि स्ट्रेस बस्टर
जी,
स्ट्रेस बहुत है, और कहीं आराम पाने के लिए अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसी भावना से जाती हूँ कि 2-2.5 घंटे आराम करते
आराम करेंगे,
तो वहाँ जाकर निश्चिंताई से कोई टेंशन नहीं होती, ब्रेन एकदम फ्री होता है, और शायद वो एक स्ट्रेस बस्टर का काम करता है।
बिल्कुल हो सकता
मुझे
है,
मुझे ऐसा लगता है।
देखिए आजकल को एजुकेशन है ज्यादातर स्कूलों में और कॉलेजेस में भी, तो लड़कियों में ये नहीं है कि लड़का मुझे देख रहा है इसलिए मैं सुंदर लगूं। जिस दिन वो चाहते हैं पार्टी में जाना है, लड़का भी तैयार होने के लिए पार्लर जाता है और लड़की भी जाती है। ये एक नई युवा पीढ़ी की नई सोच। अब देखिए पार्लर कल्चर जिसमें कि बच्चे हजारों रुपए लुटा देते हैं, लेकिन उन्हें ये सही लगता है कि सुंदर दिखना चाहिए, वो उनका आत्मविश्वास जगाता है, उसको और आगे बढ़ाता है, तो इसके लिए लड़के भी और लड़कियां भी दोनों पार्लर जा रहे हैं।
बिल्कुल, ये बड़ा डिबेटेबल इशू है कि पार्लर सुंदर बनाता है कि असुंदर। मैं इस बारे में एक्चुअली बात नहीं करना चाहूंगी सर, आपसे पूछना चाहूंगी स्टाइल।
मैं उसके लिए ये बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी सोसाइटी में अभी वेस्टर्न को अपनाया जा रहा है, वेस्टर्न को अपना के प्लस हिंदू ट्रेडिशंस, मतलब जो हमारे इंडियन कल्चर को उसका एक मीडियोकर ऑडियंस एक बीच का ऐसा है, आप देखिए कि आप यूथ को डिस्करेज भी नहीं कर सकते, यूथ को इसलिए डिस्करेज कर सकते उसने सारा कुछ वेस्टर्नाइज थोड़ा ले लिया है, उसने कुछ अच्छी बातें ली हैं और हमारे हिंदू जो हमारी ट्रेडिशंस हैं कल्चर्स हैं उसको भी अपनाया है।
बिल्कुल।
और आप देखिए सलवार कमीज अभी पहन रही हैं लड़कियाँ, और जहाँ तक पार्लर की बात है, पार्लर का देखो ये वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, नो डाउट अबाउट इट। जो आप देखिए यंग बच्चे जा रहे हैं 11वीं 12वीं में, ये जो आपके वो होती हैं पार्टीज आफ्टर 12th, आप देखो कैसे वो सच सच के जाते हैं, तो ये वेस्टर्न है। प्लस देखिए चेंज तो आना है, चेंज को आपको अपनाना पड़ेगा।
बिल्कुल। और ये नहीं,
बुरो नहीं, अब जब हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे तो हमें बुरा लगता था कि यार इन्होंने ये चीज, लेकिन ये देखिए कि हम भी वही चीज देख रहे हैं।
मैं यहाँ पे सारे श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी कि चेंज को एक्सेप्ट करने में ही अकलमंदी या भलाई है, क्योंकि चेंज तो होगा।
देखिए चेंज होगा, लेकिन उस चेंज को ये बच्चों को बताना आवश्यक है कि उनकी मर्यादा क्या है।
बिल्कुल।
ये जब तक आप उनको उनकी मर्यादा नहीं बताएंगे, बच्चे तो नदी का वेग है, उद्दाम लहरों की तरह बहते चले जाएंगे, रास्ते में जो कुछ आएगा उसे अपने साथ बहा के ले जाएंगे। तो उन्हें ये बताना है कि तुम्हें बाढ़ के साथ नहीं बहना है, तुम्हें अपनी सीमाओं को समझना है, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, उनका स्टाइल है आजकल, देखिए परिवर्तन हर जगह है। आप बताइए हमारे जमाने में कहाँ ये कंप्यूटर होते थे और कहाँ इंटरनेट होते थे, कहाँ हम फेसबुक पे मित्र बनाते थे, वहाँ तो मित्रता करना ही मुश्किल होता था, फेसबुक की मित्रता तो बहुत जोर की बात है। सो ये अगर उनका स्टाइल है, इसको अपनाना तो है, चल रहा है, लेकिन उनकी सीमा बांधना एज ए पेरेंट, एक टीचर के नाते, एक पेरेंट के नाते, उनके बड़े बुजुर्गों के नाते, उन्हें एक सीमा में रखना आवश्यक है। अब आप ये कहेंगे कि सीमा में कैसे बांधे, वो तो बंधेंगे नहीं, लेकिन उन्हें बार बार इस बात के प्रति सचेत करना, ये बहुत आवश्यक।
और जया जी एक बात और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि आज का जो युवा है वो प्रदेशों की और देशों की सीमा का मोहताज नहीं है अपनी ड्रेसिंग सेंस को लेकर।
बिल्कुल।
वो चाहे तो किसी भी देश की कोई भी ड्रेस पहन सकता है, या आजकल आप देखिए जो बंगाली लड़कियां हैं वो भी सलवार कमीज पहन रही है, क्योंकि बच्चे और जगह यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जो कल्चरल एक्सचेंज है वो बड़ा फास्ट। दूसरा, आजकल मीडिया इतना एडवांस्ड है और आप टीवी पर फिल्म्स में बहुत तरह के कॉस्ट्यूम्स देखते हैं, इसलिए आजकल की युवा का जो स्टाइल है वो बड़ा वर्सेटाइल है।
वो इसीलिए क्योंकि उनको देखने को एक्सपोजर इतना मिलता है, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए बच्चे एकदम अडेप्ट कर लेते हैं नई चीज़ को। बट मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ मैम इंदिरा जी से, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि बाउंडेशन या लिमिट्स उनको सिखाना हमारा कर्तव्य है,
वो बहुत ज़रूरी है।
वो बहुत ज़रूरी है, उनको हमें एक्सपोजर की इजाज़त देनी चाहिए, पर सही या गलत की जानकारी उसके पहले देनी चाहिए।
बहुत, अर्थात पेरेंट्स को भी ज़रा खुलकर अपने बच्चों से बातचीत करना आवश्यक है।
कम्युनिकेशन
बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी ने तब कहा था कि बिन भय होए न प्रीति, ये बात देखिए उस टाइम की है, लेकिन ये आज भी
एप्लीकेबल,
बिल्कुल एप्लीकेबल है। अब भय का मतलब ये नहीं कि डंडा लेके उनके सर पे बैठे रहो, लेकिन भय का मतलब है कि उन्हें उनकी सीमाओं के प्रति सचेत किया जाए।
बिल्कुल। आज की युवा पीढ़ी पर बात आगे ले जाते हुए सविता जी आपसे जानना चाहूंगी, आजकल के बच्चों को हर चीज बहुत जल्दी चाहिए, उनको पढ़ाई जल्दी हो जानी चाहिए, पैसा जल्दी चाहिए, ग्रोथ जल्दी चाहिए, चेंज जल्दी चाहिए, दे वॉन्ट एवरीथिंग फास्ट,
जेट इज है ना,
तो उसको मैनेज कैसे करें हम?
जय जी देखिए बिल्कुल ठीक बात है, आजकल का युवा उसको बहुत ही तेज चाहिए। आप देखिए उनके रीमिक्स सॉन्ग सुनिए, ऐसे लगता है कोई डंडा लेके गाने वाले के सिर पे खड़ा है। नहीं, आप सहमत होंगी मेरे साथ
नहीं,
कि उनका इतना लाउड म्यूजिक और जिस तरह से रीमिक्स वाले सॉन्ग्स का म्यूजिक है कितना फास्ट। इसके अलावा ड्राइविंग भी वो फास्ट करना चाहते हैं, सैलरी भी आप देखिए कितनी जल्दी जल्दी आजकल जॉब चेंज कर रहे हैं बच्चे, कि उनको और जल्दी अमीर होना है, और ज़्यादा पैसा चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, उनको 30-32 साल की उम्र में अपना फ्लैट चाहिए।
बिल्कुल।
दे वॉन्ट टू अचीव एवरीथिंग वेरी फास्ट,
प्रोबेबली दे हैव अ चांस ऑफ डूइंग इट मैम।
यस आई थिंक सो।
सी एवरीबॉडी डजंट गेट ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज, कुछ लोग इसके लिए शॉर्टकट्स भी अपनाते हैं विच इज वेरी रॉन्ग,
वो गलत हो जाता है।
यू हैव टू टेल देम, उसके लिए पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए। बच्चों को उतनी इंडिपेंडेंस दीजिए जिससे उनका नुकसान ना, जहाँ आपको लगे कि बच्चे नुकसान की तरफ जा रहे हैं वहाँ पेरेंट्स का रोल शुरू हो जाता है।
मैम एक्चुअली वो हवा में ग्रोथ बहुत है।
बिल्कुल बिल्कुल।
MNCs जब से आई है, जब से दी वर्ल्ड हैज बिकम वन ग्लोब, तब से ग्रोथ इतनी है कि बच्चे को लगता है जब मेरे को 20-22 साल के अंदर नौकरी मिल जाती है तो 10-15 साल, 32 साल, 35 साल में तो वो कर बैठता है जो शायद हमने 60-70 80 साल तक पहले कभी अचीव
नहीं किया। He owns a house, he owns a wonderful car, ही हैज़ अ वाइफ ऑफ हिज चॉइस एंड ही वॉन्ट्स एवरीथिंग फास्ट, और उस पर भी वो सेटिस्फाइड नहीं है, उसको और सैलरी चाहिए, और बड़ा घर चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, इसका नुकसान भी हो सकता है।
इंद्रा मैम, आपसे इसी बारे में पूछना चाहूंगी।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज की युवा पीढ़ी जो है उसके लिए कुछ शब्दों के, कुछ बातों के, कुछ विचारों के मायने बदल गए। अगर आप देखिए, जैसे ये ग्रोथ की बात है, तो उन्हें विकास चाहिए और बिना ठहरे चाहिए, चाहे उसके लिए उन्हें शॉर्टकट भी करना पड़े। इसी प्रकार अगर आप देखें तो सामाजिक दायित्व में प्रेम, सेक्स, इन सब चीजों के मायने बदल गए उनके लिए। वो उस पीढ़ी के साथ नहीं जीना चाहते जिस पीढ़ी के साथ या जिन विचारों के साथ शायद हम जीते थे।
बिल्कुल।
हालांकि एक उम्र के पश्चात मैंने ये भी देखा है कि एक उम्र के पश्चात उन्हें लगता है कि नहीं, हमारे पेरेंट्स ने जो कहा वो ठीक है। तो हमें उनको समय समय पर इन बातों के प्रति जागरूक करते रहना चाहिए, ये हमारा दायित्व।
लेकिन एज के हिसाब से जो चीजें सीखी जाती हैं वो सिखाई नहीं जा सकती।
वो आप, मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि उन, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कहीं वो बच्चे जो है उम्र के पड़ाव पहले ही पार करने लगे, वो समय से पहले बड़े हो गए, समय से पहले वो बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि इतना एक्सपोजर है, मीडिया का है, टीवी का है, फिल्मों का है, कि उन्हें सारी बातें बहुत जल्दी पता लग जाती है, जो बातें हमें पता नहीं होती थी, शायद अभी भी हम थोड़ा हमारा ज्ञान अधकचरा हो, उन्हें वो सब पता है, और उन्हें पता है कि हमें कैसे क्या करना चाहिए, कैसे क्या करना है।
सो एक्सपोजर इज द बेस्ट टीचर।
आई थिंक सो समटाइम।
हाल फिलहाल युवा पीढ़ी तो एक्सपोजर से ही ग्रो कर रही है मैम।
बिल्कुल, वो उसी से ग्रो कर,
मतलब उनको एक्सपोजर से ही सीखते हैं और वो ट्राई करके सीखते हैं। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि इंडिया के अंदर कल्चर की स्ट्रेंथ की वजह से सही गलत बहुत जल्दी जान जाते हैं।
बिल्कुल
सर, आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी इसी बारे में।
बिल्कुल जय जी, आपने जो लास्ट में बात की मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। सब कुछ फास्ट चाहिए, उनका बस चले तो बिना पढ़ाई करके भी जल्दी पैसा आ जाए, जो पॉसिबल नहीं है। आप 12वीं के बाद कोई डिग्री लेने लेते हैं, ठीक है, आपने शुरू शुरू में देखा होगा जब बच्चे 12वीं के बाद आते हैं तो माँ बाप की सुनते नहीं है। वो इसलिए नहीं सुनते क्योंकि उन्होंने सब कुछ जो बॉलीवुड मूवीज और यार दोस्तों को और जो एक्सपोजर की बात कर रहे हैं,
प्रेशर,
हाँ, तो वो जो है सुनते नहीं है। इतनी फास्ट कोई अचीवमेंट नहीं मिल सकती जिंदगी में, ये तो आप देख लीजिए। जब इनको एक ठोकर लगती तब लगता है कि माँ बाप सही कह रहे थे, तो थोड़ा उनको लगेगा। देखिए, इतनी फास्ट ग्रो, इतनी फास्ट सक्सेस कभी भी नहीं मिल सकती, बिकॉज आप सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपने सैलरी ले लिया, आपकी कल शादी होगी, आपको अपना घर बसाना है, घर बसाते हुए आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं शादी के बाद सक्सेसफुल लाइफ हो, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और फिर जब औलाद आ जाती है तब और भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी जो रफ्तार है ना धीमी पड़ जाएगी,
अपने आप धीमी हो जाती है। सविता जी, आजकल के बच्चे बड़े टेक्नोलॉजी के मेनियक्स हो गए हैं, मतलब उनको कंप्यूटर और मोबाइल के सिवाय किसी हद तक फ्रेंड्स भी पसंद नहीं आते। मैं इससे आपके बारे में पूछना चाहूँगी, आपकी क्या राय है?
जया जी, ये बिल्कुल सही बात है कि ये कंप्यूटर्स और मोबाइल्स ने इनको बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड बनाया। आज देखिए, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी बाग में खेलने नहीं जाते, वो कंप्यूटर पे गेम खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन गोइंग आउट एंड प्लेइंग इन द गार्डन आउटसाइड। ये बहुत बड़ी, जिसे कहते हैं टेक्नोलॉजी की डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस तो हैं ही, देखिए एडवांटेजेस हैं, मोबाइल है, पेरेंट्स आर इन टच विद द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन आर इन टच विद द पेरेंट्स, और उसके अलावा कंप्यूटर, ये है एक कंप्यूटर ने हज़ारों लाइब्रेरियाँ उनके लिए खोल दी, आज लाइब्रेरी में बैठ के वो नोट्स ना भी बनाए तो इंटरनेट पे सब कुछ।
मैम, बहुत बड़ी एडवांटेज है। मेंशन करना चाहूंगी, आई हैव अ फ्रेंड, तो उन्होंने बोला कि सारा कम्युनिकेशन हमारा, हेलो, हाय, हैप्पी बर्थडे, सब कुछ आजकल फेसबुक या नेट पे होने लग गया।
बिल्कुल।
उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला मेरे को लग रहा है वो फील नहीं आ रही
जी,
तो उन्होंने अपना फेसबुक अकाउंट बंद करा और उन्होंने सबको फोन से हेलो विश करना चालू करा, क्योंकि जो बॉन्डिंग एक किसी से बात करके होती है वो टेक्नोलॉजी के थ्रू नहीं हो पा रही।
बिल्कुल जया जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जो SMS भेज के आपने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, हैप्पी एनिवर्सरी बोल दिया, तो भी वो फील नहीं आती जब तक कि आप उनकी आवाज ना सुन लें। और यही हमने आजकल के बच्चों को समझाना है कि कंप्यूटर है, मोबाइल है, लेकिन फिर भी जो एक पर्सनल टच की इम्पोर्टेंस है, वो एक पर्सनल टच की ही इम्पोर्टेंस है, और ये कंप्यूटर और मोबाइल जो है उनको लेथार्जिक भी बनाते जाए। और इसके अतिरिक्त वो हर टाइम मोबाइल पे बात करेंगे। मेरी तो एक मित्र हैं, उनके बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी वो अपनी गर्लफ्रेंड से पूरी रात मोबाइल पे बात करता रहा, सुबह इतना सिर दर्द था और उस सिर दर्द के कारण उसको वॉमिटिंग भी शुरू हुई और बहुत ज़्यादा ही उसकी हेल्थ प्रॉब्लम हो गई एंड ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। और मैं पेरेंट्स को भी यही कहना चाहूँगी कि बच्चे के पास कंप्यूटर है, अपना पर्सनल मोबाइल है, लेकिन उसकी एक लिमिट रखें। कोई ऐसा समय रखें पूरे दिन में जबकि पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के, चाहे वो डिनर टेबल हो या इकट्ठे बैठ के टीवी देखें, ताकि आपस में जो वार्तालाप है वो समाप्त ना हो जाए।
जहाँ हम कहते थे वो घर अच्छा है जहाँ पे पूजा साथ करी जाती है या जहाँ पर खाना साथ खाया।
बिल्कुल, द फैमिलीज हुज प्रे टुगेदर दे स्टे टुगेदर, ये तो इंग्लिश की बहुत फेमस कोटेशन है।
बिल्कुल, इसी को आगे ले जाते हुए राकेश जी आपसे पूछना चाहूंगी, हमारे बच्चे आजकल के युवा पीढ़ी जो है वो पॉलिटिक्स को किस तरीके से लेती है और उसका पॉलिटिक्स में क्या रोल है?
देखिए, पॉलिटिक्स लेने से पहले जो मैम ने बात की है,
हाँ जी जरूर,
कंप्यूटर और इंटरनेट तो चेंज नहीं होने वाला।
बिल्कुल,
आप उनको कोस नहीं सकते कि जी आप वो 24 घंटे बैठे रहते। देखिए, वो बदलाव आ चुका है। वो तभी आप बच्चे में बदलाव या चेंज ला सकते हैं जब आप उसकी काउंसलिंग करें, और काउंसलिंग करना बहुत जरूरी है। देखिए, 24 घंटे आप बच्चे को नहीं कह सकते, बच्चा इरिटेट हो जाएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा। और जहाँ तक रिलेशनशिप की बात की, मैं आपको एक सीधा उदाहरण दूँ। हमारे कॉलेज में नेक्स्ट टू माई बिल्डिंग मेरे को एक लड़की ने ईमेल से भेजा वेडिंग इन्विटेशन। वो मेरे को फ़ोन करके कह सकती थी कि साहब फ़ोन नहीं आया आज तक, मेरे को ईमेल से वेडिंग इन्विटेशन आ रहा है कि 18 फरवरी को मेरी शादी है। एंड वो हर रोज़ मेरे से बात करती हैं, लेकिन आज तक मुझे नहीं बोला फॉर्मली कि आप आके यू आर इनवाइटेड टू माय वेडिंग।
सर, लेकिन तो ये भी हो सकता है कि शायद उसको कहने में झिझक हो, तो वो एक बहुत अच्छा सा माध्यम हो जिससे उसने आपको इनविटेशन दे दिया।
नहीं, वो इस चीज को मेरे माइंड में बात आई थी, लेकिन वो अगर झिझक हो, जब वो आप सारी बातें मेरे से कर लेती हैं, तो अपनी वेडिंग के इनविटेशन के लिए आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए।
मुझे लगता है कहीं ना कहीं आत्मीयता की थोड़ी कमी हो गई है।
तो वो या तो उनको पता नहीं, इग्नोरेंट है, या उन्होंने रियलाइज नहीं किया, तो चलो हमें कोई गिले शिकवे नहीं है।
ऐसा भी होता है कि समाज में रहके कभी कभी व्यवहारिक बातें, जैसे कहते हैं ना वर्ल्डली विजडम, उसकी कमी हो जाती है।
पर वो ही फास्ट पेस्ड वर्ल्ड, उसके साथ हमारी युवा भी फास्ट पेस्ड ही हो रही है।
हाँ जी, मैं पॉलिटिक्स की बात, पॉलिटिक्स में देखिए, अगर आपकी युवा पीढ़ी को देखें, पहले तो मैं एक आपको आंकड़ा बताऊं कि 50% हिंदुस्तान की आबादी जो है 18 से 25 साल के बीच में।
बिल्कुल।
और 66% जो लोग हैं वो बिलो 35 ईयर्स हैं। तो इसका मतलब मोर देन हाफ द पॉपुलेशन जो है यूथ है। ठीक है, तो अब यहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है। अगर आप लेटेस्ट जो चुनाव के रिजल्ट्स देखें, बिहार में देख लीजिए, बिहार में नीतीश सरकार क्यों आई? लोगों को चेंज चाहिए, लोगों को डेवलपमेंट चाहिए। आपको मालूम है शीला सरकार तीसरे साल तक अपने राज कर रही है। बिकॉज दे हैव सीन द चेंजेस, मे बी बिकॉज ऑफ CWG, मे बी बिकॉज सो मेनी फ्लाईओवर्स। तो ये जो है, ये जो आपने पहले भी जिक्र किया कि जात पात से ऊपर उठना चाहते हैं और इनको कुछ डेवलपमेंट चाहिए, तो पॉलिटिक्स में चेंज। और अगर आपको याद होगा 2004 में जब वाजपेयी गवर्नमेंट का बदलाव हुआ था, तो आपने अगर उस टाइम सर्वे किया था यूथ का, तो यूथ ने कहा था कि हमें ओल्ड लोग नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, वी वॉन्ट द यंगर जनरेशन टू कम,
उनको जो समझ पाए,
जो उनको समझ पाए।
बिल्कुल,
तो वो देखिए, सी द थिंकिंग ऑफ दिस यूथ विच इज कमिंग अप वेरी फास्ट।
कई नेताओं के बच्चे भी अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। आप देखिए, अब युवा जिसे कहते हैं ना, युवा मार्गदर्शन,
और ये एक बहुत ही अच्छा चेंज है हमारी कंट्री के लिए।
आप देखना, आने वाले टाइम पे ये जो हमारी पुरानी, आपको मालूम है 70-80 साल में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, कोई एक दिन वो भी आएगा जब आपको 40 या 50, जैसे ओबामा है, पॉलिटिक्स में चेंज आएगा और आने वाले वक्त पे आप देखना कि यू विल फाइंड अ यंगर प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया।
बिल्कुल, इसी को विश करते हुए कि हमारे इंडिया में जल्दी ही यंग प्राइम मिनिस्टर्स, यंग प्रेसिडेंट्स भी हों। इंदिरा मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, बच्चों को क्या अपना दायित्व समझ आता है? युवा पीढ़ी क्या आज निभा सकती है जो उसको करना होता है अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए? आर दे रिस्पॉन्सिबल एंड डू दे डू अ गुड जॉब ऑफ इट?
देखिए, इसके दोनों पहलू में बताऊंगी।
हाँ जी,
कहीं कहीं पर युवा वर्ग जो है अपने दायित्व में हमारी दृष्टि से चूक जाते हैं।
ठीक,
उनकी दृष्टि से वो चूकते नहीं है, हमारी दृष्टि से चूक, हम कभी कभी जो बुजुर्ग होते हैं वो उनसे क्वालिटी टाइम चाहते हैं, वो शायद वो नहीं दे पाते। धन दौलत के आधार पर वो दे देते हैं सब कुछ अपने माता पिता को, लेकिन शायद वो सामिप्य नहीं दे पाते जिसकी माँ बाप को तलाश होती। तो यहाँ उनका दायित्व कहीं कहीं हमारी दृष्टि से जरूर चूक जाता है। लेकिन अगर आप समाज और देश के प्रति देखें तो देश में जब कभी कोई ऐसी बात होती है, कोई संकट की बात होती है, कोई विपत्ति की बात होती है, कोई खुशी की बात होती है, तो सारा यूथ इकट्ठे मिलकर, अब आप क्रिकेट मैचेस देखिए, सारा यूथ इकट्ठे होकर मैचेस देख रहा है, भारत के प्रति नारे लगा रहा है। इसी प्रकार कितने क्राइम जो हुए हैं, कुछ केसेस हुए हैं, उनमें वो सब एक साथ निकलते हैं, कभी कैंडल लाइट लेकर, कभी कुछ लेकर, तो वो उनमें सचेतता है, दे आर अवेयर, उनको पता है हमें क्या करना है। और जब देश के प्रति कोई ऐसी भावना आती है जहाँ देश में कोई संकट आता है, तो वो चुपचाप घर में नहीं बैठे रह सकते, उस समय वो भी आगे बढ़कर निकलते हैं।
और ये भी कहीं ना कहीं हम बड़े लोगों का दायित्व बनता है कि ये हम उन्हें दें।
बिल्कुल, देखिए मुझे, मैं इसमें आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि हमने उन्हें जो दिया है सामने, उनके सामने हमने कौन सा आदर्श रखा है। हमें ये भी देखना है कि अभी पॉलिटिकल फील्ड की बात हुई तो उनके पास क्या आदर्श है, क्या कहाँ है वो नेता जो उनके, कहाँ है वो लीडरशिप जो उनके रोल मॉडल बने, वो बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। महादेवी वर्मा जी ने एक बार कहा था कि शास्त्री जी जैसे, राजेंद्र प्रसाद जी जैसे सांचे सब खत्म हो गए, वो सांचे अब बनते ही नहीं है। सही बात है, अगर वैसे सांचे इनको नहीं मिलेंगे तो वो किसकी ओर देखेंगे, कभी वो एक नेता का घोटाला सुनते हैं, कभी दूसरे नेता का घोटाला सुनते हैं, तो क्या वो उनके प्रति उनके मन में कोई प्रेम नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी ये बात अवश्य है कि वो अपने दायित्व को समझते हैं अपनी दृष्टि से, और जब देश पर कोई विपत्ति आती है तो जरूर उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मुझे राम नरेश त्रिपाठी जी की एक कविता जो उन्होंने युवकों को संबोधित करके लिखी थी, जाता है जब फैल देश में कोई विषम रोग संक्रामक, अथवा ऊपर आ पड़ता है जब भीषण दुर्भिक्ष अचानक, जब जनता पुकार उठती है त्राही त्राही स्वर से अतिकातर, तब नव युवक स्वतंत्र देश के क्या बैठे रहते हैं घर पर।
बिल्कुल नहीं,
घर पर नहीं बैठते,
बिल्कुल
हैं
नहीं,
उस समय
बिल्कुल।
वो भी आगे,
लेकिन रोल मॉडल की कमी है जया जी।
ये तो मैं भी मानती हूँ कि लीडरशिप वो लीडर्स ही नहीं है।
बिल्कुल
अब्दुल कलाम, अच्छा, जरूर जरूर सर, नहीं जरूर।
रोल मॉडल्स की बात की तो अभी आप देखिए एपीजे कलाम,
हाँ जी,
आज प्रेसिडेंट हटने के बाद भी यूथ जो है
उनको सुनने को तैयार,
इंटरेक्ट करते हैं यूथ के साथ। उन्होंने कितना इंटरेक्ट किया था जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जवाहरलाल नेहरू का देख लीजिए,
बिल्कुल,
he was the first prime minister of India.
So you've got to understand them somewhere,
yeah,
in order for them to understand, yeah, you, ये आपको उनके साथ आप ही को बनाना पड़ेगा।
बिल्कुल, अगर आप यूथ का जब सर्वे करें या उनसे पोलिंग करें, 90% से ज्यादा अब जो अब्दुल कलाम जो हैं, इनको प्रेसिडेंट अगेन चाहेंगे वो।
बिल्कुल,
because he is for youth. आप देखिए किससे घुल मिल, बच्चों स्कूली बच्चों से मिल जाते थे, कॉलेज के बच्चों से मिल जाते थे, तो ये इंटरेक्शन बहुत
जरूरी है, बहुत जरूरी है, बच्चों के पारिवारिक स्तर पर भी, सामाजिक स्तर पर भी, देश के स्तर पर भी, उनके साथ उनके विचारों को समझना, और ये नहीं कहना कि तुम्हें क्या पता आजकल के बच्चों को तो कुछ नहीं मालूम, ऐसा उनके साथ कहना अन्याय।
कम्युनिकेशन गैप नहीं होना था, जैसे मैम ने बोला कि कम्युनिकेशन बच्चों के साथ रखिए, आप इंटरेक्ट कीजिए, चाहे बेशक वो आपसे बात नहीं, लेकिन आपने एक इनिशिएटिव लेना है, बिकॉज आप एक समझदार हैं, बच्चा तो अभी रॉ स्टेज पे है, तो आपने इनिशिएटिव लेके बच्चे बेटा क्या हाल है ऐसे पूछ के करें, तो आई थिंक सो काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व
की। ये एक साइकिल है, आप समझिए इस साइकिल में वो बच्चे भी फिर उसी रूप में आपके साथ जुड़ जाते
हैं।
जया जी देखिए तो बच्चों पे आजकल दबाव भी बहुत है, आप देखिए कॉम्पिटिशन में उनको बहुत अच्छा करना है, एक सर्टन परसेंट जो मार्क्स आए तभी इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगी, अदरवाइज वो कहते हैं
अगर उनका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं तो वो तो पुराने माने जाते हैं, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो पुराने माने जाते हैं, उन बेचारों पे प्रेशर भी तो कितना है।
बिल्कुल, सोशल प्रेशर, प्रेशर्स बहुत,
बिल्कुल, मेरे ख्याल इसी प्रेशर को कम करने के लिए वो ऊंचा ऊंचा म्यूजिक सुनते हैं, अपने कान में हर टाइम मोबाइल का हेडफोन ठूसे रखना चाहते हैं, या और मूवीज देखते हैं, डिस्कोज में जाते हैं, कि वो सुनना नहीं चाहते उनकी, उनके अगेंस्ट ये कहा जाए,
कहीं कहीं वो अपने आप से दूर भागने के लिए,
बिल्कुल बिल्कुल,
मतलब जब वो स्ट्रेस में आ जाते हैं तो कहीं अपने आप से ही दूर भागने के लिए डिस्क जाते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला स्ट्रेस बस्टर, अब वो क्या करें, इतना स्ट्रेस है सोसाइटी में कि उसको अगर घर पे ही क्लियर हो जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है,
नहीं तो बाहर जाना पड़ता,
नहीं तो बाहर जाना ही पड़ता है। अपने श्रोताओं से यही कहना चाहूंगी, बहुत सारी बातें हो गई हैं आज रेडियो मानव रचना पर, आज की युवा पीढ़ी पर, अपना कर्तव्य हमें निभाना पड़ेगा और युवा पीढ़ी को अपना कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा। लीडरशिप हमें लानी पड़ेगी, अब्दुल कलाम और बनाने पड़ेंगे, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू हमें और बनाने पड़ेंगे, जिनको देखकर शायद युवा पीढ़ी को सही दर्शन, सही डायरेक्शन मिल पाए आगे बढ़ने के लिए। आज की युवा पीढ़ी पर बात करते हुए सविता मैम आपसे एक छोटा सा, आप जो बच्चों को, युवा पीढ़ी को सुनने वालों को एक मैसेज देना चाहें।
जी, मैं तो आज की युवा पीढ़ी को यही कहना चाहूँगी कि नई टेक्नोलॉजी से जुड़ें, लेकिन अपनी परंपरा को ना भूलें, अपनी जो संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में अच्छी बातें हैं उनको भी साथ में लेकर चलें।
ज़रूर सर, आपसे
बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगा कि टेक्नोलॉजी तो आती रहेगी और उसको अपनाते रहिए, साथ में अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को मत भूलिए, अपने पेरेंट्स को आप रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज पेरेंट्स ज़िंदगी भर आपके लिए करते रहते हैं। अगर आप 12th क्लास तक भी हैं तो आप देखें कि पूरा आपका ध्यान रखते हैं। तो
सर उसके अलावा मेरे को लगता है एक दुआ माँ बाप की जो काम करती है वो शायद कोई भी चीज़ काम नहीं करती।
बिल्कुल,
इसलिए अपने बड़ों का आदर तो बहुत ज़रूरी है, हमारी सभ्यता और कुछ सिखाती ही नहीं सिवाय बड़ों के आदर।
देखिए, आप अगर आदर करेंगे भी नहीं तो किसी न किसी स्टेज पर आकर आप करने लग जाएंगे।
सो द सूनर द बेटर। बिल्कुल, इंद्रा मैम आपसे एक छोटा सा संदेश हमारे युवा के लिए।
मैं तो ये कहूँगी कि अपने उच्च मूल्यों के साथ सहज होकर वो जीना सीखे, केवल इंटरनेट की सर्फिंग में अपने युवा और अपने यौवन को वो ना खोए।
क्या खूब मैम, हिंदी के साथ किसी को खेलना हो तो वो शायद आप ही से सीखे। बहुत खूब मैम, यहीं पे खत्म करते हैं हम आज की चर्चा, आज की युवा पीढ़ी पर। यहीं पर आप बने रहिएगा और सुनते रहिएगा हमारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम जो हम आपके लिए लेके आते हैं रेडियो मानव रचना 107.8 पर।